नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप राइनोमिस से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की आज घोषणा करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य की 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए के आर्थिक सहायता भी हस्तांतरित की गई। ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा जुलूस के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद कर्फ्यू लगाया गया। राजस्थान सरकार ने जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की। हादसे में 6 लोगों की जान गई है। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य सहित 22 पदकों के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की आज घोषणा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देंगे। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने बिहार में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। आयोग ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं का आकलन किया। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 125 सीट जीती थी और महागठबंधन को 110 सीट मिली थी। निर्वाचन आयोग ने संजीव अरोरा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई पंजाब की राज्यसभा सीट के चुनाव उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। नामांकन आज से 13 अक्टूबर दाखिल किए जा सकेंगे। पर्चों की जांच 14 अक्टूबर को और मतदान 24 अक्टूबर को होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक की यात्रा की। लगभग 3.6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर के पहले चरण का नाम प्रायोरिटी कॉरिडोर दिया गया है। इस चरण में मेट्रो सेवाएं अंतर्राज्य बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक संचालित होंगी। 6 वर्षों के इंतजार के बाद पटना रेल सेवा के पहले चरण का आज उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था। यात्रियों के लिए मेट्रो यात्रा कल से शुरू होगी। राज्य अर्धसैनिक पुलिस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। 3 डिब्बों वाली प्रत्येक मेट्रो में प्रति यात्रा लगभग 900 यात्री बैठ सकते हैं। श्री नीतीश कुमार ने आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए अंतरित किए। इस दौरान महिला लाभार्थियों के खातों में कुल 2,100 करोड़ रुपए भेजे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया था। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में बहुप्रतीक्षित नामचिक नामफू कोयला खदान का भूमि पूजन कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री रेड्डी ने इस परियोजना को नई आशा का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह पूर्वोत्तर भारत में विकास और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ टन कोयला भंडार की क्षमता वाले नामचिक नामफू कोयला खदान आज से आधिकारिक रूप से चालू हो गई है। श्री रेड्डी ने कहा कि कोयला ऊर्जा क्षेत्र का आधार है और इसके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। श्री रेड्डी ने कहा कि ये नया कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य को नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र से वार्षिक 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की आशा है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार निकट भविष्य में और अधिक कोयला क्षेत्रों को चालू करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं, जिससे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बहुत लाभ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022 और 23 के लिए माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने एनएसएस इकाइयों और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयंसेवकों को 40 पुरस्कार प्रदान किए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एनएसएस स्वयंसेवकों इकाइयों और सामुदायिक सेवा तथा राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम अधिकारियों के असाधारण योगदान को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया भी इस अवसर पर उपस्थित थे। एनएसएस एक केंद्रीय योजना है। स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के जरिए युवा विद्यार्थियों के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करने के मुख्य उद्देश्य से 1969 में इसका शुभारंभ किया गया था। भारत और यूरोपीय संघ आज मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ब्रसेल्स में 14वें दौर की वार्ता शुरू करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्ता 5 दिनों तक चलेगी। इसके बाद G20 व्यापार आयुक्तों के शिखर सम्मेलन से अलग दक्षिण अफ्रीका में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोविक के बीच एक अन्य बैठक होगी। यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ को शुल्क मामले पर वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाकर नए अवसरों के द्वार खोलने की संभावना रखता है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा है। श्रीमती गीतांजलि ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत सोनम वांगचुक की नजरबंदी को चुनौती देते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी को नजरबंदी का आधार बताने के बारे में कोई निर्णय देने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। पिछले महीने लद्दाख में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत नजरबंद किया गया था। राजस्थान में जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में कल रात लगे भीषण आग की जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा आयोग की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घायलों के उचित उपचार और देखभाल का आश्वासन दिया है। अस्पताल की सघन चिकित्सा इकाई में कल रात आग लगने की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी। शॉर्ट सर्किट के कारण आग अस्पताल की दूसरी मंजिल पर स्थित ट्रॉमा सेंटर में तेजी से फैल गई। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉ. अनुराग धाकर ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और तेजी से फैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना में हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया है कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से फोन पर बात की और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसक झड़पों के बाद कल सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। हिंसा शुक्रवार रात को हुई थी जब कुछ स्थानीय लोगों ने विसर्जन जुलूस के दौरान तेज संगीत बजाने पर आपत्ति व्यक्त की। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र तेजी से बदल रहा है और प्राकृतिक गैस भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई दिल्ली में प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के 19वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस सिर्फ एक और ईंधन नहीं है बल्कि देश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का एक सेतु है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय दल ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदकों सहित 22 पदक जीते। उन्होंने एथलीटों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता कई लोगों को प्रेरित करेगी। उन्होंने दल के प्रत्येक सदस्य पर गर्व व्यक्त किया और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में टूर्नामेंट की मेजबानी करना भी भारत के लिए सम्मान की बात है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।